सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के सत्र में। 12वें दिन मध्य लीला हमने प्रारंभ की है। थोड़ा सा सारांश फ्लैशबैक, मध्य लीला के पहले दो अध्यायों में कविराज गोस्वामी संपूर्ण शेष लीला का सारांश बताते हैं। उसके पश्चात संन्यास के पश्चात महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु छल पूर्वक उन्हें अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में लेके जाते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय का शीर्षक आता है चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर। उसके पश्चात वहां पर शची माता उन्हें मिलती है और वो कहती है कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, आप वृंदावन मत जाइए, ताकि आपका समाचार हम तक पहुंचता रहेगा। इसलिए महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। चार भक्तों को अपने साथ लिए हुए है महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद, इनको लेके महाप्रभु जा रहे हैं। जाते जाते वो रास्ते में खीर चोर गोपीनाथ यहाँ का दर्शन करते हैं और महाप्रभु सारी कथा माधवेंद्रपुरी की सारे भक्तों को सुनाते हैं। तो ये था हमारा चौथा अध्याय, माधवेंद्रपुरी की महानता, गोपाल जी का प्राकट्य और खीर चोर गोपीनाथ के पास टाइम्स। उसके पश्चात आगे जाते हैं वो, फिर पांचवा अध्याय आता है साक्षी गोपाल, इसका वर्णन नित्यानंद प्रभु कथा सुनाते हैं, सारे भक्त बैठकर सुनते हैं। उसके पश्चात दंडभंगा नदी, वो लीला होती है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ देते हैं, नदी में बहा देते हैं और फिर महाप्रभु गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा, आप सब लोग पीछे जाइए। तो महाप्रभु आगे जाते हैं और वहां पर दर्शन के पश्चात वो जब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, तब सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को उठा के अपने घर लेके जाते हैं। और वहां पर फिर हम लोगों ने कल देखा किस प्रकार से उनके बीच में जो है वो वार्तालाप होता है। सर्वम भट्टाचार्य वेदांत का दर्शन महाप्रभु को सुनाते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि जो है वेदांत जो है वो स्वयं सूर्य के किरण जैसे प्रकाशमान है, लेकिन आपकी टीका उनके ऊपर बादल के समान एक आच्छादन के रूप में काम कर रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर महाप्रभु संपूर्ण भक्ति का ज्ञान उनको प्रदान करते हैं और उससे उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। वो इतने बड़े दर्जे के भक्त हो जाते हैं कि वो महाप्रभु को कई सारी स्तुतियां अर्पण करते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से दो श्लोक ताड़पत्र में लिख के वो भेजते हैं जो मुकुंद दत्त वो याद कर लेते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा लेकर के। और उसके पश्चात हमने देखा कि वो एक श्लोक का शब्द ही परिवर्तित कर देते हैं, जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तत्तेनुकंपम सुषमिक्ष मानो, उसमें जो मुक्तिपदे शब्द है वो कहते हैं कि ये मुक्तिपदे शब्द मेरे मुझे त्रास दे रहा है और मुझे घृणा आती है इसकी तरफ देख के, तो इसलिए वो भक्तिपदे शब्द डाल के वहां पर महाप्रभु को सुनाते। महाप्रभु फिर ठीक से उस शब्द का अर्थ उन्हें बताते हैं और उनको आलिंगन देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से सर्वम भट्टाचार्य को एक भक्त बना देते हैं भगवान। अभी महाप्रभु के मन में इच्छा होती है कि मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर प्रचार करने के लिए जाऊं। कविराज गोस्वामी सातवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। मते सार्वभौमेर निस्तार कोरिल, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिला। इस प्रकार से मैंने सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार की लीला आपको बताई है। अभी महाप्रभु के मन में दक्षिण देश में जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। कविराज गोस्वामी सारांश में बताते हैं कि किस प्रकार से कौन से महीने में क्या क्या अभी तक हुआ है। तो वो बताते हैं कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। उसके पश्चात फाल्गुन महीने में महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। चैत्र महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार हुआ और हमारा सौभाग्य अभी देखिए, चैत्र महीने में सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार किया था महाप्रभु ने और हम लोग भी चैत्र महीने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य इनके उद्धार की कथा सुन रहे हैं। और उसके पश्चात वैशाख महीने के शुरुआत में ही महाप्रभु अभी दक्षिण जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक दिन महाप्रभु अपने सारे भक्तों को जो चार भक्त प्रमुख उनके साथ में थे उन सबको बुला लेते हैं और वो अपनी एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो कहते हैं कि आप सब लोगों के बिना मैं रह नहीं सकता, आप लोग मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आपको छोड़ के मैं कहीं पर नहीं जा सकता और आपके आशीर्वाद और कृपा से ही भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन और यहाँ का धाम मुझे मिला हुआ है, लेकिन आपसे मैं आज एक दान मांगना चाहता हूं। एबे सबा स्थाने मुए मांगो एक दाने, सबे मेली आज्ञा देह चाहिब दक्षिणे। आप सब लोग एकत्रित आके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अभी दक्षिण भारत जाना चाहता हूं। और महाप्रभु कारण बताते हैं कि मेरे जो भाई थे विश्वरूप संन्यास लेने के पश्चात वो दक्षिण भारत गए थे और उनका कुछ अता पता नहीं है, उन्हें ढूंढने के लिए मुझे जाना है और मैं अकेला जाना चाहता हूं, ऐसा महाप्रभु बताते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं साक्षात ईश्वर है, वो सब जानते हैं कि उनका देहावसन हो गया है विश्वरूप का अभी तक, लेकिन फिर भी वो बहाना दे रहे महाप्रभु कि उनको ढूंढने जाना है ताकि वो दक्षिण भारत में जाके वहां के लोगों का उद्धार कर सके। ये तो केवल बहाना है। जैसे ही सारे भक्त महाप्रभु के मुख से सुनते कि वो दक्षिण जाना चाहते हैं, सारे भक्त दुखी हो जाते हैं क्योंकि अभी उन्हें महाप्रभु का संग नहीं मिलेगा और उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को विनती करते हुए कहते हैं कि महाप्रभु आप तो जाएंगे लेकिन आप अकेले कैसे जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में तो चोर लोग लूटने का ये सब भय रहेगा, तो हम में से कम किसी दो भक्तों को तो आपको लेके जाना चाहिए, ऐसा नित्यानंद प्रभु उन्हें कहते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो मैं पहले ही भारत भ्रमण कर चुका हूं, जैसा मैंने बताया आपको, हम जब साक्षी गोपाल मंदिर में थे मैं वहां पर पहले भी गया था इसलिए मैं आपको वो कथा बता पाया, तो मैं पहले भी भारत भ्रमण किया हुआ है, मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे तो लेके ही जाइए साथ में। फिर अभी अलग अलग भक्तों के दोष बताते हैं महाप्रभु, उन्हें वो क्यों साथ में नहीं लेके जाएंगे। वास्तव में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो दोषारोपण कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो महाप्रभु उनके गुणों का ही अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर रहे हैं, जिसे कहते हैं व्याजस्तुति। इससे वो मतलब दोष बताना और वास्तव में गुण का वर्णन करना होता है, लेकिन दोषारोपण करके गुण का वर्णन करना ऐसा होता है। तो महाप्रभु सबसे पहले नित्यानंद को कहते हैं कि अरे नित्यानंद, संन्यास लेने के पश्चात मैं वृंदावन जाना चाहता था, छल पूर्वक तू मुझे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर लेके गया, तुझे मैं क्यों साथ में लेके जाऊं, और उसके बाद अद्वैत आचार्य के घर से जब मैं जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा तो मेरा संन्यास का दंडा तुम्हें तोड़ दिया जो मेरा एकमात्र धन संपत्ति था, तो आपको तो मैं बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा, नित्यानंद प्रभु को ऐसा कहते हैं महाप्रभु। फिर महाप्रभु कहते हैं कि ये जगदानंद ये तो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप इंद्र तृप्ति करो, मुझे अलग अलग व्यंजन खाने के लिए कहता है और मुझे डर लगता है इसका, मैं भयवश वो कर भी लेता हूं तो इसलिए मैं जगदानंद को भी नहीं लेके जा सकता साथ में। और ये मुकुंद ये जब देखता है कि मैं सन्यासी इतना तपस्या कर रहा हूं तो ये दुखी हो जाता है, अभी तो सर्दी के भी दिन होंगे तो भी मुझे ठंडे पानी से 3 बार स्नान करना होगा, मुझे जमीन पर सोना होगा, तो इतनी सारी तपस्या मेरे से होगी तो ये दुखी हो जाएगा, तो ये दुखी हो जाएगा, तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं मुकुंद को भी साथ में नहीं ले जा सकता। और बच्चा ये दामोदर ये तो ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी होके मुझ जैसे सन्यासी को दंडा देखा जाए और मुझे इसका भी डर लगता है, ये कहता है कि मैं नव सिखिया हूं और हमेशा मुझे नियम के बारे में बताता रहता है, ये करो वो करो ऐसा मत करो, तो मैं इसको भी नहीं लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये चारों भक्तों में महाप्रभु प्रेम के कारण अलग अलग दोषों के बारे में बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो उनके गुणों का ही जो है वो वर्णन करना चाह रहे होते हैं। नित्यानंद प्रभु फिर कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु थोड़ा सोचिए, आप जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आप जप करेंगे, और जो जप करेंगे उसकी गणना भी आपको करनी होगी कितना माला हुआ है। तो आपके दोनों हाथ बिजी रहेंगे, उसमें व्यस्त रहेंगे, और उसके साथ साथ आपके कपड़े भी लेके जाने हैं, और आपके पास दो ही हाथ है, तो निश्चित रूप से आपको तो कोई तो एक व्यक्ति लगेगा ही साथ में, जो आपके वस्त्र, आपका कमंडलू, ये सब पकड़ के लेके जाएगा, संन्यास का कमंडलू। तो महाप्रभु कहते, सोचते हैं कि ठीक है मैं किसी को लेके जा सकता हूं। फिर बीच में ही नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यहां पे एक भक्त है कृष्णदास करके, बहुत अच्छा भक्त है, सरल भक्त है, ब्राह्मण है, आपकी अच्छे से सेवा करेगा, आप इसे लेके जाइए। महाप्रभु राजी हो जाते हैं, कहते ठीक है आप जैसा कह रहे हैं तो मैं कृष्णदास को जो है वो लेके जाऊंगा। फिर इस प्रकार से उन सारे भक्तों को विदा दे के महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य की अनुमति लेने के लिए जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास जाके महाप्रभु कहते हैं कि देखो देखो ऐसा है कि मैं अभी दक्षिण भारत जा रहा हूँ, मेरे भाई विश्वरूप वो संन्यास लेके गए थे, अभी तक मिले नहीं है, तो उनका समाचार मुझे चाहिए, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और कहते हैं कि महाप्रभु अभी अभी तो आपका संघ हमें मिला है, और उस संघ में अभी आप भंग डाल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरियाए, तहा सही तुम्हारा विच्छेद सहीते ना पाए। शिरे वज्र पड़े, मेरे सर के ऊपर इंद्र का वज्र भी क्यों ना गिर जाए, पुत्र मरी जाए, मेरा पुत्र भी मर जाए, तो भी मैं तहा सही उसको मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा विच्छेद सहन ना पाए, मैं आपका विच्छेद, आपसे विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हमने देखा कल किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से आसक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, लेकिन थोड़ा चार पांच दिन रुक जाइए, आपका थोड़ा और संघ हमें दीजिए, कुछ और दिन रुक के फिर आप जाइए। इस प्रकार से महाप्रभु, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पे देखते हैं कि महाप्रभु सन्यासी होने के बावजूद सार्वभौम भट्टाचार्य जो गृहस्थ थे उनका आदर कर रहे थे और उनसे अनुमति मांग रहे थे जाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किबा विप्र किना किबा न्यासि शूद्र केन न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कौन गृहस्थ है कौन ब्रह्मचारी ये तय नहीं करता कौन ऊंचा है या कौन नीचा है। किस व्यक्ति को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ है वह व्यक्ति जो है वो ऊंचा माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनकी बातों को सुन लेते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य इनकी पत्नी थी जिनका नाम था शाठी माता, मतलब प्रभुपाद जी के ब्रैकेट में शाठीर माता, शाठी करके कोई उनका होगा दंपति, तो उनकी माता शाठीर माता। तो शाठी माता जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रसाद बनाती है, जगन्नाथ जी का भी महाप्रसाद लाया जाता है, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य इनके यहाँ पर पाँच दिन के लिए और रुकते हैं, और उसके पश्चात फिर महाप्रभु उनसे अनुमति लेते हैं और वो कहते हैं कि अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दक्षिण भारत के लिए प्रयाण करना चाहता हूँ। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य इनको सब भक्तों को लेके महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ जी का वहां पर दर्शन करते हैं, वहां पर महाप्रभु को जगन्नाथ जी का सेवक विशेष प्रसाद और माला अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों से आज्ञा ली महाप्रभु ने, भगवान से आज्ञा ली, और उसके पश्चात जो है जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश जाना चाहते थे प्रचार कार्य के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु, उस समय भी श्रील प्रभुपाद जी शांतिपुर गए थे, उन्होंने अद्वैताचार्य इनके आशीर्वाद लिए थे, भगवान के आशीर्वाद लिए, भक्तों से आशीर्वाद लिए, और उसके पश्चात वो निकल पड़े थे। तो हम किसी भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान और उनके भक्त इनसे यदि अनुमति ले तो हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी महाप्रभु जो है निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी से और अलालनाथ की तरफ अभी वो जा रहे हैं। जाते जाते सार्वभौम भट्टाचार्य रो रहे हैं और महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु जाने से पहले सुन लीजिए मेरी और एक विनती है आपसे। महाप्रभु कहते हैं बोलो क्या विनती है। सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि देखिए आप जा तो रहे हैं, दक्षिण भारत में विद्यानगर करके एक गांव है, वहां पर भगवान के बहुत बड़े भक्त रामानंद राय वो रहते हैं, और आप उनसे जाके जरूर मिलना। ये बहुत ही विद्वान और भक्ति रस ज्ञाता है, उनसे आप जरूर मिलिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है मैं उनसे जरूर मिलूंगा, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं जरूर मिलूंगा रामानंद राय इनसे, लेकिन आप जब घर पे जाएंगे ना तब आप एक काम कीजिए, घरे कृष्ण भजी मोरे करह आशीर्वादे नीला चले आसिये न तोमार प्रसादे। घर पे जब आप कृष्ण का भजन करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तब वहां पर भगवान से एक प्रार्थना करना और मेरे लिए आशीर्वाद मांगना, क्या नीलाचल आसी ये न तुम्हारा प्रसाद है, कि आपकी कृपा से मैं वापस नीलाचल सफलता पूर्वक मेरा कार्य करके वापस आ जाऊं, क्योंकि आपके बिना भी मैं नहीं रह सकता, ऐसा महाप्रभु जो है वो कहते हैं। फिर महाप्रभु अभी सर्वम भट्टाचार्य इनको छोड़ के जाने वाले है, सर्वम भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं और सर्वम भट्टाचार्य वहीं पर मूर्छित होके गिर जाते हैं। सर्वम भट्टाचार्य भी मूर्छित है, महाप्रभु अलालनाथ की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं, महाप्रभु पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि वो गिरे हैं या कुछ हुआ है। इस प्रकार से जो महान भागवत होते हैं कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका स्वभाव होता है वो फूल से भी मृदु कोमल और वज्र से भी कठोर होते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु आगे जा रहे हैं, बाकी भक्त महाप्रभु के साथ में अलालनाथ तक जा रहे हैं। जैसे महाप्रभु अभी जा रहे हैं, जाते जाते बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, नृत्य हो रहा है, भगवान की स्तुतियों का गान हो रहा है, और जो भी कोई उनसे उनको देख रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है, वो भी कृष्ण नाम ले रहा है, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होके गान कर रहा है और नृत्य करना प्रारंभ कर रहा है। जो दूर से लोग देखते हैं तो वो चकित हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का जो है वो कीर्तन चल रहा है। केहना चे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल प्रेमेते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल, कि किस प्रकार का वो कीर्तन हो रहा था। केहना चे केह गाय, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था, श्री कृष्ण गोपाल ये सब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। प्रेमेते भासिल लोक स्त्री वृद्ध और अबाल, छोटे लोग, वृद्ध लोग, स्त्रियां, पुरुष, ये सारे लोग एकत्रित होके भगवान के नाम के कीर्तन में मदमस्त हो रहे थे, मग्न हो रहे थे। सारे लोग इस प्रकार से जब कीर्तन में जुड़ जाते हैं, बड़ी संकीर्तन टोली वहां से गुजर रही होती है, नित्यानंद प्रभु उस कीर्तन की टोली को देख के एक भविष्यवाणी करते हैं, देख नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे यही रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखो भक्तगणों, देखो इस प्रकार से जो अब ये नृत्य और कीर्तन हो रहा है, ये भविष्य में चल के हर एक ग्राम ग्राम में ये नृत्य जो है वो होगा। इस प्रकार से सवेरे निकले थे, अभी दोपहर हो गई थी, दोपहर को महाप्रभु के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, सारे भक्त वहां पर रहते हैं, और फिर कुछ समय के पश्चात शाम जब हो जाती है तब कई सारे लोग वहां पर महाप्रभु के दर्शन के लिए आ जाते हैं। फिर पुनः जो है वह संकीर्तन चलता है, कृष्ण कथा चलती है। रात के समय वहीं पर अलालनाथ में महाप्रभु निवास करते हैं अपने भक्तों के साथ। दूसरे दिन सुबह स्नानादि कर्म के पश्चात महाप्रभु वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं, और सारे भक्त अभी वहां पर महाप्रभु का विरह नहीं सहन कर पा रहे, वो वहां पर मूर्छित होके गिर पड़ते हैं। महाप्रभु बिल्कुल उनकी तरफ न देखते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार एकमात्र अभी महाप्रभु के मन में चल रहा है। महाप्रभु आगे चले जाते हैं, और फिर कुछ समय के पश्चात जब ये सारे भक्त सचेत अवस्था में आ जाते हैं, वो पुनः बिना कुछ बोले चुपचाप नीलाचल की ओर अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इधर महाप्रभु मदमस्त होकर कीर्तन में नृत्य करते हुए प्रचार के लिए आगे जा रहे दक्षिण दिशा की ओर, और पीछे कृष्णदास उनका कमंडलू और उनके वस्त्र लेके महाप्रभु के पीछे जा रहे हैं। एक मदमस्त सिंह की तरह महाप्रभु कीर्तन करते हुए निकल पड़े हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाही माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। इस प्रकार से कीर्तन में मदमस्त होकर महाप्रभु नृत्य करते हुए जो है वो जा रहे हैं। जिन भी लोगों को रास्ते में देखते थे महाप्रभु महाप्रभु चिल्लाते थे बोलो हरि हरि, तो इस प्रकार से वो लोग हरि हरि कहते थे और उनके नयनों से प्रेमाश्रु बहने लगते है और वो भी महाप्रभु के साथ चलना प्रारंभ कर देते थे। महाप्रभु उनको देखते उनको आलिंगन करते थे और उनको अपने घरों की दिशा में पुनः भेज देते थे। वो लोग अभी जिन्हें कृष्ण प्रेम मिला हुआ है महाप्रभु से आलिंगन लेने के पश्चात वो लोग जाते थे और किसी दूसरे व्यक्ति को जब मिलते थे वो वही कृष्ण प्रेम उस दूसरे व्यक्ति में भी संचारित हो जाता था और जिस उस दूसरे व्यक्ति में जो कृष्ण प्रेम संचारित हो गया है वो अभी अपने गांव में जाता था किसी और को मिलता था उन लोगों को वो मिलता था तो उन व्यक्तियों को भी कृष्ण प्रेम मिल जाता था। तो इस प्रकार से ट्रांसफर होता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जिस प्रकार से आजकल हम लोग देख रहे कोरोना वायरस फैलता है एक जगह से दूसरी जगह में उसी प्रकार से महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त कृष्ण प्रेम और कृष्ण कृपा का वायरस जो है वो इस प्रकार से गांव के गांव लोग जो है वो एक एक दिन के अंदर भक्त बन जाते थे। इस प्रकार से महाप्रभु का जो है वो दक्षिण भारत का गमन चल रहा था। चलते 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 महाप्रभु एक दिन कूर्म स्थान में पहुंचते हैं। एमत आईते आईते गेला कूर्म स्थान है कूर्म देखी कई लता रे स्तवन प्रणामे। कुर्म गांव में आते हैं महाप्रभु जहां पर भगवान के कुर्म अवतार का वो दर्शन करते हैं और हमें पता है जब भी महाप्रभु दर्शन करने के लिए जाते हैं किसी भी मंदिर में वहां पर प्रणाम अर्पण करते हैं स्तुतियों का गान करते हैं कीर्तन करते हैं नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने वो सब वहां पर किया। कई सारे लोग वहां पर एकत्रित होते जाते हैं कि ये कौन अलग से सन्यासी आया हुआ है और जैसे महाप्रभु उनको मिलते हैं उन लोगों को भी कृष्ण प्रेम में मदमत्त करा देते हैं। तो इस प्रकार से जो वह संकीर्तन चलता रहता है वहीं पर एक कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु से निवेदन करता है कि कृपया आप मेरे घर पर प्रसाद पाने के लिए चलिए। कूर्म ब्राह्मण के घर महाप्रभु प्रसाद के लिए चले जाते हैं। कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु का बहुत अच्छे से स्वागत करता है उनके चरणों को धोता है अभिषेक करता है और वो जो जल है महाप्रभु के चरणों को धोया हुआ अपने सारे परिवार वालों को वो बांटता है अपने भी सर पे छिड़कता है और इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा भी उस कूर्म ब्राह्मण को मिलती है। कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु से कहता है कि महाप्रभु आप हमारे घर पर आ गए मेरे सारे परिवार वाले लोग मेरा कुल मेरा घर अभी धन्य हो गया है कितना मैं भाग्यशाली हूं मेरे भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। जब महाप्रभु उनके पश्चात वहां से जब निकल रहे होते हैं तो कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु से कहता है कृपा करी प्रभु मोरे यान तो मार संगे सही तेना पारी दुख विषय तरंगे। महाप्रभु कृपया मुझे भी आपके साथ लेके चलिए इस आश्रम में और यहाँ पर जो जो विषय तरंग है उनको मैं सही ते ना पारी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ कृपया मुझे आपके साथ लेके चलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वो महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है लेकिन महाप्रभु कहते है प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही बा गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लयबा। प्रपद तत्पर में लिखते हैं कि सारे गृहस्थों के लिए महाप्रभु ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और सबने इसका पालन करना चाहिए दृढ़तापूर्वक। क्या कहते हैं महाप्रभु प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही बा ऐसा बिल्कुल मत कहो कि तुम इस संसार में त्रस्त हो। क्या करो गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लयबा आप यहीं पर घर पर रहो और भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन पूरे परिवार के साथ जो है वो एकत्रित रूप से करते रहो। और एक बहुत प्रसिद्ध उपदेश महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को देते हैं यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है या तारे यही देश। यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश जिस व्यक्ति को भी आप इससे आगे देखेंगे उस व्यक्ति को कृष्ण का उपदेश यानी भगवद गीता और श्रीमद भागवत इनका संदेश आपको सुनाना है और अमर आज्ञा गुरु है या तारे यही देश मेरी आज्ञा का आपको पालन करके गुरु बनना है और इस देश का आपको उद्धार करने के कार्य में लग जाना है। कबू ना अब्बा देवे तुम्हारा विषय तरंग पुनरपि ए ठाई पाई मोर संग। इस प्रकार से यदि तुम कार्य करोगे कबू ना बाधिवे तुम्हार विषय तरंग, इस संसार के विषय तुम्हें कभी भी जो है वो बाधित नहीं करेंगे, और पुनः जब मैं वापस लौटूंगा मेरा संग तुम्हें वापस यहां पर जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से दक्षिण भारतपुरी यात्रा में जब भी जहां पर महाप्रभु जाते थे उनका उपक्रम इस प्रकार से ही होता था। किसी मंदिर में या सड़क पर महाप्रभु रात बिताते थे, और किसी ब्राह्मण के घर में प्रसाद देते थे, और उस सारे घर वालों को अपनी कृपा देते थे जिस प्रकार से कुर्म ब्राह्मण को दी थी, और शाम के समय जैसे ही सारे लोग वहां पर एकत्रित होते थे वहां पर कीर्तन करते थे, और सारे गांव वालों को महाप्रभु अपनी कृपा देकर दूसरे दिन सुबह स्नान करके वो दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान करते थे। यही जो है वो महाप्रभु का पूरा दक्षिण भारत यात्रा का वापस आने तक पूरा जो है वो फॉर्मेट था। इस प्रकार से महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते जाते कुर्म ब्राह्मण का उद्धार करने के पश्चात अगले गांव में पहुंचते हैं। वहां पर और एक ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम है वासुदेव ब्राह्मण। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय। वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण उन्हें मिलता है, सारे शरीर पर उसे कुष्ठ रोग हो गया है, और कुष्ठ के साथ साथ जो कई सारे कीड़े उसके शरीर में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ये इतना सद्गुणी ब्राह्मण था, इतनी दया उनके हृदय में आप्लुत थी कि जो कीड़े उनके शरीर से नीचे गिर जाते थे उन कीड़ों को भी उठा के वासुदेव ब्राह्मण अपने उस शरीर के ऊपर पुनः रख देता था। जैसे वासुदेव ने सुना कि महाप्रभु हमारे गांव में आए हैं, महाप्रभु को ढूंढने के लिए वो जाता है, और ढूंढते ढूंढते कुर्म गांव तक पहुंचता है, कुर्म ब्राह्मण से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि महाप्रभु पहले ही एक गांव छोड़ के अभी दूसरे गांव में चले गए हैं। जो वासुदेव था वो अभी विलाप करने लगता है कि कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि महाप्रभु आए और मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। इस प्रकार से विलाप करने लगता है और मूर्छित होके वहीं पर गिर पड़ता है। महाप्रभु अगले गांव जो गए थे अगले गांव से पुनः वापस आते हैं और वासुदेव का उद्धार करने के लिए वापस वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। वासुदेव को मिलते हैं, वासुदेव को महाप्रभु आलिंगन करते हैं, और आलिंगन जैसे ही करते हैं वासुदेव का जो है वो कुष्ठ रोग तुरंत दूर हो जाता है। वासुदेव एक बहुत ही सुंदर कांति वाले तरुण ब्राह्मण के समान हो जाते हैं, और कृष्ण प्रेम भी महाप्रभु वासुदेव को प्रदान करते हैं। वासुदेव महाप्रभु की इस कृपा को देखने के पश्चात जब सुदामा को कृष्ण की कृपा मिली थी और सुदामा ने जो वचन कहे थे वही वासुदेव अभी यहां पर दोहराते हैं। क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। क्वाहम दरिद्रः पापियान्, किस प्रकार से मैं दरिद्र पापी हूं। क्वह कृष्ण श्रीनिकेतनः, और कहां पर जो कृष्ण है जो लक्ष्मी के पति है साक्षात। बाहुभ्याम परिरंभितः, फिर भी उन्होंने मुझे आलिंगन देके मेरा उद्धार किया हुआ है। इस प्रकार से श्लोक अर्पण करता है, प्रार्थना अर्पण करता है और महाप्रभु को धन्यवाद देता है। लेकिन फिर भी वासुदेव के मन में एक चिंता हो रही है कि जब लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस वासुदेव के रूप में हो गई तो मेरे मन में जो है वह अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं भगवान का कृपा पात्र हुआ, और जब अहंकार बढ़ेगा तब मैं उस अहंकार को सहन नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु वासुदेव के मनोभाव को जानते हुए वासुदेव को कहते हैं, प्रभु कहे कबू तुमार न होबे अभिमान निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। कि यदि तुम निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो कभी तुम्हारे मन में जो है वो अहंकार की भावना उपस्थित नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव ब्राह्मण दोनों एकत्रित आते हैं और महाप्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि और कुछ समय के लिए रहिए, हम भी आपके साथ में चलेंगे। महाप्रभु ने कहा कदापि नहीं, जो मैंने आज्ञा दी है उसका पालन करो, मैं अभी यहां से निकल रहा हूं। दोनों वहां पर विलाप करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं और महाप्रभु कीर्तन करते हुए आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु ने कूर्म देव का दर्शन किया, कूर्म ब्राह्मण के ऊपर कृपा दी और वासुदेव जो कुष्ठ रोगी था उसे भी कृपा प्रदान की, इस कथा को मैंने वर्णन किया है। आप सब लोग सुन रहे हैं, आपको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। क्या आशीर्वाद? श्रद्धा करे ये लीला, ये करे श्रवण, अचिरात मिले तारे चैतन्य चरण। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है बहुत शीघ्र ही उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं। और जैसा कि हमारी प्रथा है, जो पहला श्लोक अध्याय का प्रारंभ में वर्णन आता है, यह सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का प्रारंभ, दक्षिण भारत यात्रा महाप्रभु की, उसमें ये जो पहला श्लोक है कविराज गोस्वामी सारे अध्याय का सारांश यहां पर बताते हुए कहते हैं, धन्यम तम नवमि चैतन्यम वासुदेवम दयार्द्रधि नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारय। कितना सुंदर महाप्रभु की कृपा क्या दिखा रहे हैं। धन्यम तम नवमी चैतन्यम, उन धन्य उन शुभ और उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, दयार्द्रधि जिन्होंने अपनी कृपा वासुदेवम उस वासुदेव ब्राह्मण को दी और क्या किया, कृपावश नष्ट कुष्ठम उसका कुष्ठ रोग दूर कर दिया, रूप पुष्टम उसके रूप को सुंदर कर दिया और उसके साथ साथ भक्ति तुष्टम कृष्ण प्रेम प्रदान करके उसके भक्ति को भी तुष्ट किया, चकार ही कर दिया। ऐसे श्री महाप्रभु को मैं प्रणाम अर्पण करता हूं। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर श्लोक में कविराज गोस्वामी जो वासुदेव ब्राह्मण के ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु आगे 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 चल रहे हैं और चलते 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 महाप्रभु एक जियड़ नरसिम्हा करके क्षेत्र है वहां पर जाते हैं, नरसिम्हा भगवान का दर्शन करते हैं, वहां पर कुछ स्तुतियों को अर्पण करते हैं और यहां पर हमारा आठवां अध्याय प्रारंभ होता है जिसका शीर्षक है राय रामानंद संवाद। फिर जियड़ नरसिम्हा का दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु रात्रि वहीं पे बिताते हैं और जैसे मैंने कहा कि पूरा उनका फॉर्मेट फिक्स है, रात्रि के समय कुछ लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, उन्हें महाप्रभु दर्शन देंगे, कीर्तन करेंगे और किसी मंदिर में रुकेंगे और दूसरे दिन पश्चात सुबह महाप्रभु निकल पड़ते हैं। और कुछ दिन चलते 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 महाप्रभु एक दिन गोदावरी नदी के तट पे आते हैं, गोदावरी नदी में स्नान करके स्वच्छ होने के पश्चात महाप्रभु एक जगह बैठ के कृष्ण के कीर्तन में मग्न है। उसी समय वहां पर कुछ ब्राह्मण वैदिक स्तुतियों का गान करते हुए रामानंद राय इनको पालकी में लेके आ रहे हैं स्नान कराने के लिए। रामानंद राय वहां पर उतरते हैं, विधिवत गोदावरी नदी में जो है वह स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात जैसे ही देखते हैं बगल में ये कौन बड़ा सन्यासी बैठा दिखाई दे रहा है, उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम अर्पण करते हैं और महाप्रभु सोचते हैं कि शायद ये रामानंद राय तो नहीं, चलो पूछ लेता हूं। महाप्रभु पूछते हैं, क्या आप रामानंद राय है? रामानंद राय कहते हैं, जी हां, मैं एक शूद्र राजा का सेवक रामानंद राय मैं ही हूं। महाप्रभु जैसे ही सुनते यही रामानंद राय, महाप्रभु उन्हें आलिंगन देते हैं और जैसे ही आलिंगन देते हैं दोनों कृष्ण प्रेम में मदमत्त होके रोना प्रारंभ कर देते हैं और वहीं पर भूमि पर गिर पड़ते हैं। जो ब्राह्मण रामानंद राय के साथ में है उनके मन में शंका हो जाती है कि एक सन्यासी ने एक शूद्र को आलिंगन दिया और ये दोनों रोने लग गए, ये क्या अचंभित करने वाली बात है। वो भौचक्के हो जाते हैं। महाप्रभु जैसे ही देखते हैं कि इन लोगों के मन में कुछ संशय आ रहा है, अपनी अंत अवस्था से वो अपनी सचेत बाह्य अवस्था में जो है वो आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहना प्रारंभ कर देते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे कहा कि आप जब दक्षिण में विद्यानगर क्षेत्र में जाएंगे तब रामानंद राय इनसे जरूर मिलना। तो रामानंद राय कहते हैं कि हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो मुझे एक सेवक के रूप में स्वीकार किए हुए हैं और मैंने सुना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके ऊपर कृपा दी है और शायद उसी के कारण आपका मुझे भी जो है वो दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कहां तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहां मुई राजसेवी विषयी शूद्र अधम, कि आप जो है वो कहां पर साक्षात नारायण ईश्वर है चैतन्य महाप्रभु और कहां मैं एक राजा का सेवी, एक विषयी व्यक्ति, एक शूद्र, एक अधम व्यक्ति हूं। आप कितने दयालु हैं। वेद आज्ञा नहीं देती है कि एक सन्यासी एक शूद्र को आलिंगन दे, फिर भी आपने जो है वो मुझे आलिंगन दिया है। आपके शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं और जो आप केवल लोगों को आलिंगन देके या उनको देख के भी कृष्ण प्रेम संचारित करते हैं, ऐसे आप महान हैं, आपकी जय हो जय हो। चैतन्य महाप्रभु कहते अरे मैं तो केवल एक मायावादी सन्यासी हूं, महाभागवत तो आप है और मेरे कठोर हृदय को मुलायम बनाने के लिए शायद सर्वभौम भट्टाचार्य ने ऐसा कहा था कि आपसे मिलो। उसी समय एक ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु को कहता है कि कृपया आप मेरे घर अभी प्रसाद के लिए चलिए। महाप्रभु उनका आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। रामानंद राय उसी समय कहते हैं कि महाप्रभु आप इतने बड़े भक्त हैं, आप स्वयं भगवान हैं, कृपया 5-7 दिन यहीं पर आप विद्यानगर में रहिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें आपका संग मिलेगा। तो इस प्रकार से संध्या स्नान और उस ब्राह्मण के यहाँ पर प्रसाद के पश्चात महाप्रभु आते हैं और रामानंद राय से पुनः शाम के समय मिलते हैं और यहां से प्रारंभ हो जाता है सुप्रसिद्ध रामानंद राय संवाद। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ जो बड़े विद्वत दिग्गज लोग थे उनके साथ भी संवाद किया, वेदांत भगवद गीता और सारे सिद्धांतों की चर्चा की और उन्हें भक्त बनाया। कौन से श्रेणी के भक्त उसमें आते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इनका उद्धार करके महाप्रभु ने इनके साथ जो है वो वेदांत दर्शन की चर्चा की। कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके साथ महाप्रभु ने एक उच्च रस और उच्च तत्व के साथ चर्चा की, उसमें आते हैं रामानंद राय आदि भक्त। कुछ भक्त हैं जिनके साथ महाप्रभु ने कृष्ण तत्व का ज्ञान उन्हें प्रदान किया और उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा, वो भक्तगण है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि। और जनरल मासेस मतलब कुछ लोगों के साथ महाप्रभु केवल जो है वो उनको आलिंगन देना, उनकी तरफ देखना और नगर कीर्तन करना, इस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें भक्त बनाया। तो इन 4 अलग अलग प्रकार से महाप्रभु भक्त बनाने का उपक्रम जारी रखे थे। 4 प्रकार हमने देखे, किस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि ज्ञानी पंडित लोग, रामानंद राय ऐसे भक्तगण जिनके साथ जो सर्वश्रेष्ठ दर्जा की चर्चा, राधा कृष्ण तत्व इसकी चर्चा उन्होंने उनके साथ की। तीसरे थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जैसे भक्त जिनके साथ महाप्रभु ने भक्ति का ज्ञान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए प्रेरणा दी। और चौथा है जनरल मासेस जिनके साथ महाप्रभु ने केवल अपना दर्शन देके, आलिंगन देके और कृष्ण का कीर्तन करके जो है वो प्रचार किया। तो इस प्रकार से जो अभी शाम को महाप्रभु रामानंद राय इनसे मिले हुए हैं, तो अभी महाप्रभु एक प्रश्न रामानंद राय से पूछते हैं। तो 3 अलग अलग प्रश्न और उत्तर यहां पर होगी। देखिए रामानंद राय जो है वह स्वयं एक मंजरी के समान है और चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये दोनों जब एकत्रित आके कुछ चर्चा करेंगे तो उस चर्चा से हम जैसे बद्ध जीवों का निश्चय ही लाभ होने वाला है, क्योंकि जिस कारण के लिए महाप्रभु इस धरातल पर अवतरित हुए हैं वो कारण यहाँ पर सिद्ध होता है। इसलिए ये संवाद खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही जो है वो लाभप्रद है। सबसे पहले महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्यर निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति होए। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि महाप्रभु ने यह सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, यह है महाप्रभु का पहला प्रश्न साध्य। तो अभी उसको चलते रामानंद राय कुछ जवाब देंगे और उस जवाब के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं ये जवाब सुनकर ये उसकी प्रतिक्रिया, महाप्रभु की प्रतिक्रिया क्या है वो लिखना है। और पहले लिखना है कि रामानंद राय इनका क्या जवाब है। तो सबसे पहला प्रश्न है साध्य, साध्य निर्णय, साध्य क्या है सर्वश्रेष्ठ उसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहला रामानंद राय बताते हैं स्वधर्म आचरण, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्वधर्म आचरण। यह पहले जवाब दिया रामानंद राय इन्होंने कि किस प्रकार से स्वयं का धर्म का आचरण का यदि हम लोग पालन करते हैं तो उससे विष्णु की भक्ति हो सकती है। और इसके चलते कई सारे रेफरेंसेस भी रामानंद राय देते हैं, उतना समय हमारे पास है नहीं। जैसे ही महाप्रभु जवाब सुनते हैं प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वधर्म सार। तो महाप्रभु की प्रतिक्रिया है एहो बाह्य। तो पहला जवाब था रामानंद राय का स्वधर्म आचरण, उसकी प्रतिक्रिया महाप्रभु ने दी एहो बाह्य, ये तो बाह्यात्कारी है थोड़ा आगे कहो। उसके चलते फिर रामानंद राय कहते कि ठीक है आप यदि कह रहे हैं कि स्वधर्म आचरण नहीं है तो फिर कृष्ण कर्मार्पण, ये है सारे साध्यों का सार, कृष्ण कर्मार्पण ये शब्द आप लिख सकते हैं। और किस प्रकार से बताते हैं मत करोषि मदशनासी यज्ञ होसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक प्रमाण के रूप में रामानंद राय बताते हैं। लेकिन फिर भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं है, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, इसे भी चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्रिया देते हैं बाह्य। इसके पश्चात राय कहते हैं राय कहे स्वधर्म त्याग एई साध्य सार, अपने सारे धर्मों का त्याग कर देना यही सारे धर्मों का सार है। और भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। महाप्रभु कहते हैं ये स्वधर्म को त्याग को भी महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। जब ये इसे भी बाह्य कर दिया सर्वधर्म त्याग को भी, तो रामानंद राय कहते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति ये उससे भी श्रेष्ठ है। ज्ञान मिश्र भक्ति उसका भी प्रमाण जो है वो देते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्र भक्ति को भी बाह्य कह दिया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब बाह्य कह दिया रामानंद राय कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और उसे हमने जो है वो साध्य का सार मानना चाहिए। और भागवत का श्लोक बताते हुए ज्ञाने प्रयास मुदपास्यनमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोबीर ये प्रायशो जित जितोप्यसिता स्त्रीलोक्यान। इस प्रकार से भागवत का श्लोक बताते हुए रामानंद राय कहते हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति जो है वो सारे धर्मों का, ज्ञान शून्य भक्ति सारे साध्य का सार है। अभी महाप्रभु थोड़ी स्वीकृति देना प्रारंभ करते हैं, ये ज्ञान शून्य भक्ति को महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एगो एहो है आगे कह आर, ये तो ठीक है। अभी तक महाप्रभु कह रहे थे एहो बाह्य, यहां से आगे महाप्रभु कहेंगे एहो है, तू जो बोल रहा है इसको मैं मानता हूं ठीक है, तो ये तो ठीक है, इससे भी आगे कुछ कहो। राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार, अभी रामानंद राय कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति है वो सारे साध्यों का जो है वो सार है, प्रेम भक्ति। और जब प्रेम भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं उसके बाद रामानंद राय उनको प्रेम भक्ति कैसे महान है उसकी चर्चा करते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। जो कृष्ण भक्ति है जो रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, जहां कहां पर यदि क्रिय उसको बेचा जा रहा है तो तुरंत आपको जाके खरीदना होगा और उस खरीदने के लिए एक ही मूल्य है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एकमात्र मूल्य है कृष्ण भक्ति को खरीदने का, वो है लौल्य। तो इस प्रकार से जो प्रेम भक्ति है वो सारे साध्यों का सार है। प्रभु कहे एहो है आगे कह आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। इसे भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो प्रेम भक्ति बताई थी महाप्रभु कहते हैं एहो है, ये तो ठीक है, ये तो चल जाएंगी, इससे भी आगे कहो। तो इसके अगले पद में रामानंद राय कहते हैं दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार, दास्य प्रेम जो है वो श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों से दाखला देते हुए दास्य प्रेम कैसे सर्वश्रेष्ठ है इसे बताते हैं रामानंद राय। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है, प्रभु कहे एहो है किचु आगे यार, राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। इसे भी महाप्रभु कहते हैं एहो है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी और कुछ ऊपर कुछ है तो उसे बताइए। राय कहते हैं सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार, सख्य प्रेम जो है वो दास्य प्रेम से भी जो है वो बढ़कर है। इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण सार्धम विजहु कृत पुण्य पुंजा। किस प्रकार से पुण्य अर्जित किया होगा ये सब बालकों ने, जो आपको कई कई खेल में भी हरा देते हैं और आपके कंधे के ऊपर भी सवार हो जाते हैं, क्या है ये बालक। तो इस प्रकार से सख्य प्रेम जो है वो दास्य भाव से भी ऊपर उठकर प्रकाशित होता है। अभी महाप्रभु कहते हैं एहो उत्तम, पहले कहा था एहो बाह्य, उसके पश्चात कहा एहो होय, और अभी यहां पर कह रहे हैं एहो उत्तम सख्य प्रेम को। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वधर्म सार। रामानंद राय कहते हैं कि वात्सल्य प्रेम जो है वो इससे भी बढ़कर है और वो सारे साध्य को जो है वो सार है। और वात्सल्य प्रेम का उदाहरण देते हुए नंद महाराज और यशोदा इनका गुणगान कहते हुए कहते हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेबिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। कि नेमं विरिंचो, जो कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, न भवो जो शिवजी को प्राप्त नहीं हुई, न श्रीर अप्यंग संश्रया जो भगवान की अर्धांगिनी जो लक्ष्मी है उन्हें भी जो कृपा प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा प्रसादम ले भिरे गोपी, ये कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई है जो भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दी, जिनका नाम दामोदर सारे विश्व में छा गया। इस प्रकार से जो है वो वात्सल्य रस सर्वश्रेष्ठ है। इसे भी महाप्रभु कहते हैं उत्तम, उत्तम तुमने बताया है। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कह यार, राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य सार। महाप्रभु ने उसे उत्तम कह दिया, उसके पश्चात भी पूछते हैं कुछ आगे कहो। इसके बाद जो है वो रामानंद राय कहते हैं कि कांता प्रेम सर्वसाध्य सार, कि जो भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति जो माधुर्य रस का आस्वादन करती है भगवान कृष्ण की जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। कांता प्रेम सर्वसाध्य सार, और ऐसी जो अलग अलग लीलाएं हुई जैसा कि रासलीला जिसमें भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला, नायम श्रीयंग उनितांतरते प्रसाद स्वयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा आशीषाम य उद्गावत व्रज सुंदरीणाम। किस प्रकार से जब व्रज सुंदरियों के साथ भगवान कृष्ण रासलीला रचा रहे थे उस समय लक्ष्मी भी प्रवेश करना चाह रही थी लेकिन उसे भी इसमें प्रवेश नहीं मिला, इसलिए जो माधुर्य रस है वो सारे साध्यों का जो है वो सार के रूप में हमें समझना चाहिए, ऐसा रामानंद राय बताते हैं। गुणाधिक्य स्वादाधिक्य बाड़े प्रतिरसे शांत दास्य साख्य वात्सल्य गुण मधुरे ते वैसे। कहते हैं गुण में वृद्धि के साथ साथ रस के स्वाद में भी जो है वो वृद्धि होती है, और इस प्रकार से जो है वो शांत के ऊपर दास्य, दास्य के ऊपर सख्य, सख्य के ऊपर वात्सल्य, और वात्सल्य के ऊपर माधुर्य, सर्वोपरि जो है वो रस मानना चाहिए। और अलग अलग दाखले शास्त्रों से प्रमाण देते हुए महाप्रभु को रामानंद राय इस प्रकार से जो माधुर्य रस वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है, इसे स्थापित करते हैं। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एई प्रेमा होते एई प्रेमार वश कृष्ण कहे भागवते। किस प्रकार से जो है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण प्राप्ति प्रेम से और विशेष रूप से माधुर्य रस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और कृष्ण के इस स्तर के जो है वो प्रेम से ही वश में लाया जा सकता है, ऐसा श्रीमद् भागवत बताता है। इतना गाढ़ा प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे ये भजे कृष्ण तारे भजे तैचे। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा है जो भी उनको जिस भाव में शरण आता है उस भाव के साथ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, लेकिन गोपियों ने इस प्रकार से प्रेम दिखाया है कि उस प्रतिज्ञा का भी भंग करना पड़ा भगवान कृष्ण को। यही प्रेमेर अनुरूप न पारे भजिते अतएव ऋणी है कहे भागवते। इसलिए ऐसा प्रेम गोपियों ने जताया था भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रेम को मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, लेकिन इस ऋण को मैं चुकता नहीं कर सकता। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वस्वादु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवत में यह श्लोक आता है रासलीला के अंतिम पाड़ाव में, भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुजाम, कि ब्रह्मा जी के जीवन काल तक भी मैं कुछ करूं तो भी आपके इस प्रेम को मैं चुकता नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, सारी जो ग्रह श्रृंखलाओं की जो और लोक धर्म सारे धर्मों से भी बंधी हुई थी आप, लेकिन उन सबको आपने त्याग कर दिया है, जिनको त्याग कर पाना बहुत मुश्किल है, और आप मेरे भजन में लगी है, इसलिए मैं आपका जो है वो ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता। इसलिए आप जो प्रेम करती है उस प्रेम से ही आप जो है वो संतुष्ट रहिए। प्रभु कहे यही साध्य अवधि सुनिश्चय कृपा करी कह यदि आगे कुछ है। इस बात को जो जो माधुर्य रस बताया है इसको महाप्रभु कहते हैं साध्य अवधि, ये सबसे श्रेष्ठ साध्य तुम बता रहे हो। पहले बता रहे थे एहो बाह्य, उसके बाद बताया एहो होय, इसके बाद कहे एहो उत्तम, और अभी महाप्रभु कह रहे हैं एहो साध्य अवधि, ये जो है वो सबसे श्रेष्ठ साध्य तुम मुझे अभी बता रहे हो, इसके भी आगे कुछ हो तो वो मुझे सुनना है। राय को है इहर आगे पूछे है न जने एत दिन ना ही जानी आछे ये भुवने। इसके आगे पूछने वाला अभी तक इस त्रिभुवन पूरे संसार में मैंने तो कभी देखा नहीं है जो इससे भी आगे कोई पूछे। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि यहार महिमा सर्व शास्त्र तेवा खाने। इन गोपियों की आगे भी कुछ है तो वो है साध्य शिरोमणि श्रीमती राधारानी का भगवान के प्रति प्रेम। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद। प्रीतोयाम अनयद्रह, कि इस प्रकार से जो है राधा रानी की महिमा का गान करते हुए रामानंद राय बताते हैं कि ये राधा रानी का जो है वो प्रेम है वो साध्य शिरोमणि है, सारे साध्यों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु कहे आगे कह शून्यते पाई सुखे, अपूर्व अमृत नदी वाहे तोमार मुखे। इस प्रकार से अमृत की नदी तुम्हारे मुख से बह रही है, आगे बढ़ते जाओ और कहते जाओ कहते जाओ। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा है कृष्णेर गाढ़ अनुराग। राधा रानी को पाने के लिए भगवान कृष्ण रास नृत्य में सारे गोपियों को भी त्याग कर देते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं। त्रिजगते राधा प्रेमेर नाहिक उपमा, तीन जग सारे तीन जगत में भी राधा रानी से बढ़कर प्रेम इस संसार में जो है वो नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो जो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, और इस श्रृंखला में जो है वो रामानंद राय जवाब देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है वो श्रीमती राधा रानी का जो है वो साध्य शिरोमणि है, और उसे कैसे पाया जा सकता है, राधा रानी का तत्व क्या है, कृष्ण का तत्व क्या है, यह प्रश्न अभी महाप्रभु रामानंद राय से पूछेंगे और रामानंद राय फिर इन प्रश्नों के क्या जवाब देते हैं यह यदि आपको सुनना है। और जो अमृत की नदी बह रही है रामानंद राय के मुख से, इसका यदि आस्वादन करके अपने कर्णों को तृप्त करना है तो आप लगे रहिए और हम मिलेंगे ठीक कल शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कुछ भक्त पूछ रहे थे कि किस प्रकार से जो चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट है इसमें भाग लिए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमने इसको नासिक की ओर से ये चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट CCC इसका आयोजन किया हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को प्रमुख रूप से 4 किताबों का अध्ययन करना चाहिए, भगवद गीता, श्रीमद भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो इन भक्तों को ये केवल ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है, इनका अध्ययन करना है और इसके साथ साथ अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करना है और दूसरों को भी बांटना है। तो इसके लिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमने इस इस्कॉन नासिक के ओर से एक उपक्रम जारी किया है जिसे हम लोग कहते हैं चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट CCC। कैसी होगी यह परीक्षा? ये परीक्षा होगी केवल आदि लीला के आधार पर। चैतन्य चरितामृत 3 हिस्सों में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। इस परीक्षा में केवल हमें आदि लीला के ऊपर गौर करना है। ये परीक्षा होगी MCQ बेस्ड, केवल मल्टीपल चॉइस प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 4 विकल्पों से जो सबसे सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है, क्योंकि 2 विकल्प भी एक जैसे हो सकते हैं, तो सबसे सही विकल्प आपको चयन करना है। 1 घंटे की ये परीक्षा रहेगी जिसमें 70 प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे और इसमें आपको 10 श्लोक भी दिए गए हैं और ये 10 श्लोक आपको याद करने हैं। ये आदि लीला के आधार पर ही है और ये केवल 10 श्लोकों को आपको याद नहीं करना है, उसके साथ साथ ये 10 श्लोक कौन से अध्याय में आते हैं, किस स्थान पर आते हैं, किसने किससे कहा है, किस संदर्भ में कहा है, उस श्लोक का अनुवाद क्या है, ये सब कुछ जानकारी होना आवश्यक माना जाएगा। और इसके आधार पर ये 10 श्लोक जो है वो श्लोकों के आधार पर भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और बाकी सारे प्रश्न जो है वो चैतन्य चरितामृत आदि लीला इनके श्लोक और अनुवाद जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया हुआ है उनके आधार पर ही पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पूछते हैं भक्त की कैसे इन ग्रंथों को हमने अध्ययन करना चाहिए। तो हमने इस लॉकडाउन पीरियड में एक श्रृंखला शुरू की है चैतन्य चरितामृत ग्रंथमाला करके, तो उसमें 8 सत्र हमने लिए थे आदि लीला के ऊपर। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, यदि आप इस कंटेस्ट में बैठना चाहते हैं तो इन 8 सत्रों को आप सुन लीजिए, हर एक सत्र एक एक घंटे का है। तो इन सत्रों में आदि लीला में संपूर्ण 17 अध्याय आते हैं, उनका विस्तार से जो है वो हमने वर्णन किया हुआ है, पूरा फ्लो कैसे चैतन्य चरितामृत आगे बढ़ता है उसका वर्णन किया है प्रवाह के साथ, और एक अनुक्रमणिका भी हमने आपके साथ शेयर की है। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उस सत्रों को सुन लेना है जिससे आपके समझ में आ जाए, उसके पश्चात आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को खोलिए और जो अनुक्रमणिका दी है कि किस प्रकार से अध्याय का प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह के साथ आप यदि पढ़ेंगे और जो सुना हुआ है उसके साथ कुछ लिंक करेंगे, तो आपको और अच्छे से जो है वो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप अध्ययन कर सकते हैं। और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि रिपीटेशन एंड रिविजन, बार बार यदि आप पढ़ेंगे तो, और आपके नोट्स भी स्वयं के बनाइए, इससे आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। और आपकी जो फाइनल एग्जाम होने वाली है उसके पहले आपकी एक मॉक टेस्ट ली जाएगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एमसीक्यू का आंसर्स दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए, और हमें भी ये परीक्षा प्रणाली कैसे होगी इसकी समझ आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट का हमने आयोजन किया हुआ है। आप भी इसमें सहभागी नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं अध्ययन कीजिए, और चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा, कविराज गोस्वामी इनकी कृपा, और खास करके श्रील प्रभुपाद जी की कृपा में अपने आप को डुबाने का ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।